ओम शांति।
ओम शांति।
16 दिसंबर की मुरली 93 ग्रुप नंबर 4। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखते हुए अपने को समर्थ आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि जितनी स्मृति होगी उतनी समर्थि होगी। स्मृति कम तो समर्थि भी कम, तो स्मृति स्वरूप बने हो या स्मृति लानी पड़ती है। जैसे अपना साकार स्वरूप कभी नहीं भूलता, सदा स्मृति रहती है कि मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसे ही अपने भाग्य के स्मृति स्वरूप बनो। याद करने से स्मृति आए और चलते चलते स्मृति विस्मृति में आ जाए तो उसको स्वरूप नहीं कहेंगे। स्वरूप कभी भूलता नहीं। एक है स्मृति करने वाले, दूसरे है स्मृति स्वरूप रहने वाले। तो आप सभी कौन हो? स्वरूप बन गए हो या विस्मृति स्वरूप? स्मृति विस्मृति का खेल चलता है। तो बाबा कह रहे हैं, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहो तो समर्थ स्वरूप बन जाएंगे। जितनी स्मृति उतनी ही समर्थि। जितना याद रहेगा ज्ञान उतनी ही आत्मा शक्तिशाली रहेगी। जिस समय बुद्धि से ज्ञान विस्मृत हो जाता है उस समय कमजोर होता है, उसी समय विकारों की उत्पत्ति होती है, उसी समय व्यर्थ आता है, उसी समय माया का वार होता है। तो जैसे अपने साकार स्वरूप याद रहता है कि मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसे अपने भाग्य के स्मृति स्वरूप बनो। क्या क्या मिला है, कौन मिला है, निरंतर ये भाग्य याद हो। हॉस्पिटल और आबू निवासी बाप दादा के सामने बैठे हैं। आप सभी तो बहुत बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि मेजॉरिटी मधुबन निवासी हो या समझते हो कि मधुबन और हॉस्पिटल अलग है। मधुबन निवासी हो ना, किस वातावरण में रहते हो? मधुबन के वातावरण में रहते हो या अलग हॉस्पिटल के वातावरण में रहते हो? क्योंकि सबसे बड़ी पालना है कौन सी? ज्ञान की पालना, मुरली की पालना। तो वो हॉस्पिटल या अपने अपने घरों में सुनते हो, वो मधुबन में ही सुनते हो, तो सबसे श्रेष्ठ पालना मुरली है। और दूसरी पालना ब्रह्मा भोजन, वो आत्मा की पालना, वो शरीर की पालना। तो दोनों मधुबन में होती है ना। अगर कोई घर में भी खाते हो तो क्या याद करके खाते हो? मधुबन में बैठे है ना, और हॉस्पिटल वाले तो खाते ही मधुबन में है ना, तो कितने लकी हो। सदा ब्रह्मा भोजन मिलता रहे, यह कम भाग्य नहीं है। सदा आत्मा की पालना विशेष आत्माओं द्वारा होती रहे, यह भी कम पालना नहीं है। सदा वायुमंडल श्रेष्ठ मिलता रहे, संग श्रेष्ठ मिलता रहे, कितने भाग्य है। अमृत वेले से लेकर हर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ। दिनचर्या में के आदि में ही पहला भाग्य कौन सा? सबसे पहला भाग्य बाप से मिलन मनाना। दुनिया तड़पती रहती है और आप अमृत वेले से रात तक मिलन मनाते रहते हो। अगर रात को सोते भी हो तो कहां सोते हो? बिस्तर पर, गोद में। तो देखो, आदि में भी भाग्य, दिनचर्या की आदि में भाग्य, मध्य में भी भाग्य, और अंत में क्या होगा? भाग्य ही भाग्य होगा ना। तो सदा अपने भाग्य की लिस्ट सामने रखो। और यही गीत गाते रहो। कौन सा? वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। हद का भाग्य नहीं, बेहद का श्रेष्ठ भाग्य। तो जो स्वयं सदा अपने भाग्य के स्मृति में रहेगा, वो औरों को भी भाग्यवान बनाएगा। जो सदा अपने भाग्य की स्मृति में रहेगा, वो औरों को भी भाग्यवान बनाएगा। जो दूसरों को आप समान नहीं बनाते और तेरे मेरे में की चिंताओं में रहते, उनको क्या कहा था कल? कल की मुरली। जो जो दूसरों को आप समान नहीं बनाते, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते, वो तो जैसे बीमार रोगी है। कल कहा था। तो सदा अपने भाग्य की स्मृति में रहेंगे, वो औरों को भी भाग्यवान बनाएंगे। जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। कुछ दिन पहले था ना, डॉक्टर की मत पर चलोगे तो डॉक्टर बनोगे, भगवान की मत पर चलोगे तो भगवान भगवती बनोगे। कुछ दिन पहले साकार मुरली थी ना। तो हॉस्पिटल वाले सारा दिन क्या करते हो, क्या करते हो? कोई है नहीं इधर हॉस्पिटल में, रूहानी हॉस्पिटल वाले सब पेशेंट को देखते रहते हो या अपने भाग्य को भी देखते रहते हो? क्या देखते हो? भाग्य को देखते हो ना, पेशेंट के साथ साथ क्या देखो? भाग्य की भी जरा चेकिंग करो, अपने भाग्य को देखो। तो भगवान और भाग्य दोनों याद रहे, भगवान भी याद रहे और भाग्य भी याद रहे। तो बाबा ने कहा कि दुनिया वाले तड़प रहे हैं और अमृत वेले से रात तक आप भगवान से मिलन मना रहे हो, तो अपने भाग्य की लिस्ट सामने रखो, अपने प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो। तो क्या क्या भाग्य मिला है हमको? एक है ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य, उससे भी है मधुबन निवासियों के भाग्य। तुम्हारा परमानेंट एड्रेस बाबा ने कहा मधुबन है, तो यहां रहना बहुत बड़ा भाग्य है। क्यों क्यों भाग्य है? यहां रहना ही बहुत बड़ा भाग्य। ये भूमि कौन सी है? ये तपस्या भूमि है। संसार में वातावरण बनाना पड़ता है, कल सुना ना हमने, यहां तो बना बनाया है। तो ये तपस्या भूमि में रहते ही स्वतः ही अशरीरीपन का अनुभव होता है। तो भाग्य की शुरुआत होती है सुबह से, अमृत वेले से। सबसे पहला भाग्य आंख खुलते ही भगवान से मिलन। कौन उठाता है? स्वयं भगवान उठाता है आकर। एक उसके बाद योग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, योग में परमात्मा मिलन का अनुभव, योग में परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव। कल का वरदान था ना, अमृत वेले क्या करो? बाप से सर्व संबंधों का सुख लो और दान करो, सर्व सुखों के अधिकारी बनो और सर्व सुखों और दूसरों को बनाओ। साकार कोई भी कर्म करते हुए साकार साथी याद ना आए। कौन याद आए? बाप याद आए। क्योंकि 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 वही सच्चा मित्र है। तो इसी स्मृति में रहेंगे तो सदा सहज निर्मोही बन जाएंगे, न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। तो भाग्य की शुरुआत हमारी होती है सुबह से, अमृत वेले आंख खुली और भगवान से मिलन। आंख खोला और सामने भगवान उपस्थित, बोलो क्या चाहिए तुमको? पूछ रहा है क्या क्या दू? मैं आया हूं देने के लिए, जो चाहिए वो ले लो। तो भगवान से सर्व संबंधों की अनुभूति, ये श्रेष्ठ भाग्य है। उसके बाद में और क्या क्या भाग्य है? मुरली का भाग्य में क्या क्या है? भगवान पढ़ा रहा है और हम पढ़ रहे हैं। संसार में ऐसा कोई सत्संग नहीं है। संसार के सत्संगों में कौन पढ़ाता है? मनुष्य पढ़ाता है। संसार के सत्संगों में शास्त्रों की बातें सिखाई जाती है। यहाँ भगवान शास्त्रों का सार वो सिखा रहा है जो आज तक किसी ने नहीं सिखाया। हाँ, कल के मुरली में था ना, यह ईश्वरीय मत, वो है आसुरी मत। ये मत छोड़कर भी डुबोने वालों के पीछे क्यों पड़ते हो? ये मत छोड़ के एक पाव इधर एक पाव उधर तो चीर पड़ोगे। भटकाने वालों के पीछे क्यों पड़ते हो? कल कहा था बाबा, तो यहाँ ईश्वरीय मत दी जाती है। तो भगवान की ये जो पढ़ाई है सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई है। तो मुरली में क्या क्या करते हैं हम? स्वयं भगवान सामने बैठकर पढ़ाता है एक, और रोज रोज वरदान देता है। संसार में एक वरदान प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। यहाँ पर सहज वरदानों की प्राप्ति है। और गुह्य राज मुरली के द्वारा इस जगत के गुह्य राज वो बताता है। ऐसे राज जो आज तक किसी ने नहीं बताए। तो मुरली का भाग्य, वरदान का भाग्य, और दिन भर में
समस्याओं का सोल्यूशन देता है।
आज बाबा ने कहा है वरदान में समस्या और उलझन। समस्या जैसे मनोरंजन है, उलझन और विघ्न जैसे कि मंजू में क्या पढ़ के आए, उलझन और विघ्न क्या है उनके लिए? उनके लिए क्या है? मनोरंजन, खेल का। समस्या जो है वो खेल का साधन है। और विघ्न, उलझन और विघ्न क्या है? कुछ और कहा है। तो ब्राह्मण आत्मा है अर्थात सदा खुश। विघ्न आए, समस्या आए, उन सब में सदा खुश, सदा नाचते रहेंगे। बाप की महिमा सागर है तो हम मास्टर सागर। वो संपन्न है, जो संपन्न है वो संतुष्ट है। तो सारे दिन में हमारा क्या क्या भाग्य है? सबसे पहले तो ब्रह्मा भोजन, ज्ञान के बाद ब्रह्मा भोजन, तो ब्रह्मा भोजन का भाग्य। उसके बाद में संग, किसका संग है? संसार की महान आत्माओं का संग, चुनी हुई आत्माओं का संग, जिन्हें भगवान ने चुना है, ऐसी महान आत्माओं का संग, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण किया है, जो कि संसार जिसे असंभव समझता है, जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित किया है, ऐसी महान निवेदिताए, समर्पिताए और अर्पिताए, ऐसी संसार में कोई आत्माएं नहीं है, ऐसी आत्माओं का संग। और कौन सा भाग्य?
वायुमंडल।
यहाँ का जो वायुमंडल है वो शक्तिशाली है। इस वायुमंडल में ही प्रकंपन है तपस्या के, प्रकंपन है पवित्रता के। यहाँ आते ही चित्त शांत हो जाता है। जैसे कोई झील होती है, उसमें तरंगे होती है और रुक जाए, निस्तरंग झील की तरह चित्त शांत होता है। परंतु हमारा मन भी उतने उच्च विचारों में हो तो होगा, व्यर्थ से मुक्त हो, यहाँ वहां बुद्धि न भटकी हुई हो, तो हमारा चित्त भी उतना ही शांत हो जाएगा। जितने महान संकल्प मन में है उतना ही वातावरण का और ज्यादा प्रभाव उस पर पड़ता है, और हमारे संकल्पों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। तो यहाँ श्रेष्ठ वातावरण है, श्रेष्ठ संग है, और
श्रेष्ठ
सेवा भी कितनी श्रेष्ठ है। किसकी सेवा कर रहे हो? सेवा भी कर रहे हो तो अज्ञानियों की तो कर ही रहे हो, परंतु ब्राह्मण आत्माओं की सेवा, उन आत्माओं की सेवा जो भविष्य में देवता बनने वाले हैं, उन आत्माओं की सेवा जो द्वापर में जिनका मंदिर बनने वाला है उनकी सेवा कर रहे हो, उनकी दुआएं प्राप्त कर रहे हो। तो दुआएं भी, संसार की आत्माओं की दुआएं प्राप्त करना दूसरी बात है, ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं प्राप्त करना उससे भी बड़ा भाग्य है।
सेवा में
जो दिनचर्या है उसमें सारे दिन का साथी भी कौन है? सच्चा मित्र, एक भगवान है, सर्व संबंध उसके साथ है, हर कार्य में भी हर संबंधों से उसको याद करना है, बाबा ने कहा। तो सारा दिनचर्या में भी वो हमारे साथ है। संडे की मुरली में था ना, तुम कितने भाग्यवान हो संसार में, भाग्यवान और धनवान दोनों, हर कदम में पदम, तुम्हारे भाग्य की तुलना में और कोई पदमपति नहीं है संसार का, इतना तुम्हारा बड़ा भाग्य है। और क्या भाग्य है हमारे सारा दिन भर में, किसकी? हाँ, चलो थैंक यू बोले ना बोले, हाँ वो तो शब्द है, जरूरी नहीं है कि जो थैंक यू बोल रहा है वो दिल से थैंक यू कर रहा है, वो तो आदत सी बन गई है ना, वो तो आदतन आदतन शब्द है।
सेवा करने के बाद
हाँ, जिसकी भी हम सेवा करेंगे उसके हृदय से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, चाहे वो मुख से निकले या ना निकले, मुख से जरूरी नहीं निकले, उसे शायद बोलता भी नहीं बोलते नहीं आता होगा, भाषा नहीं आती होगी, या जो भाव है उसको वर्णन नहीं कर सकते। जैसे आज बाबा ने कहा ना, मतलब एक दूसरी बात कही बाबा ने कि अच्छी बात है, बाप से वर्णन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी वर्णन अगर नहीं कर सकते, भाव तो है कृतज्ञता का परंतु उसको वर्णन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुआएं नहीं निकल रही है,
दर्शन ये है ना, चेहरा चला
दर्शनीय मूर्त
मैंने चेहरा दिखाता है दुआएं,
हाँ मिल रही है करके। और हमारा क्या भाग्य है सारे दिन भर, क्या है वो बताओ, बहुत है, अनगिनत है, अपार है, पूछो मत, ये नहीं क्या क्या है वो उसकी स्पष्ट।
भाग्य बनाने में कठिनाई नहीं है, सहज ही सहज है,
भाग्य बनाना सहज है,
कठिनाई नहीं है,
कठिनाई नहीं है, सहज है, रिकवरी पीरियड इधर का बहुत कम है, संसार में कुछ समस्या आ गई तो उससे निकलने में कई दिन लग जाते, कई घंटे, कई दिन, कई साल लग जाते, यहाँ पर समस्या विघ्न परिस्थिति आने के बाद भी, नाजुक परिस्थिति आज का है स्लोगन में, ऐसा आने के बाद में भी रिकवरी जो होती है फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ संगठन है,
बना बनाया मिलता,
सब बना बनाया मिलता है, कोई भी चीज का क्या नहीं है,
भाव तालिका कोई नहीं,
हाँ ये कितने में आलू के भाव बढ़ रहे हैं या तेल के भाव कम हो रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है किसी को, किराना में क्या हो रहा है, बिजली का क्या हो रहा है, संसार की किसी भी गृहस्थी में जाओ तो कितनी चिंता है उनको,
निश्चिंत रहने का बाकी
है, कपड़े धुलाई, फिर प्रेस, फिर कितना
कमरे तक पहुंच जाना,
कमरे की सफाई,
क्या
तक पहुंच जाना, कपड़े कपड़े कमरे तक पहुंच जाते हो,
अच्छा कपड़े कमरे तक आ जाते हैं, अच्छा तो भोजन से लेके तो सारी सुख सुविधा है, सुख सुविधा है, सारे साधन यहाँ है, परंतु उसमें भी खो नहीं जाना है, जितने साधन कम उसमें तपस्या उतनी ज्यादा होती है, जितने साधन ज्यादा तपस्या उसमें कम होती है, तो साधनों को होते हुए भी साक्षी भाव रहे, साधनों को होते हुए केवल सेवा अर्थ यूज करना, उसमें मोह आसक्ति या उसमें हम निर्भर ना हो जाए, केवल वो है तो नहीं साधना। हमारा यहाँ आने का लक्ष्य कोई साधन प्राप्त करना नहीं था, जब निकले थे वहां से तो ये सोच के निकले थे कि बहुत सुख सुविधा का जीवन जिएंगे, क्या ये सोच के निकले थे कि तपस्या करने जा रहे हैं, यहाँ आए थे किस लिए, सेवा करने, यहाँ आए थे किस लिए, योग करने, अपनी स्थिति को ऊपर ले जाने, कोई ये सोचकर तो कभी नहीं आया था ना कि यहाँ आएंगे आराम से खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, ये सब सोच के कोई नहीं आया था, तो यहाँ आने का लक्ष्य भी हमारे बुद्धि में निरंतर हो, हम यहाँ क्यों आए हैं, ये अपने आप से पूछते रहो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या मेरा लक्ष्य था, क्या ये सोच के निकले थे कि यहाँ आकर बहुत नाममान हो जाए, बहुत प्राप्ति हो जाए, यहाँ तो भगवान को ढूंढते ढूंढते कोई आया तो कोई भगवान को ढूंढ लिया और फिर सोचा कि ये जीवन अब उसका है, इसलिए आए थे, किस लिए आए थे, कोई कई तो ऐसे जो आए तो कुछ भी नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं था। जैसे मम्मा का ही उदाहरण है, कुछ भी नहीं था उसके पास। बाबा ने 24 घंटे का समय दिया केवल उसको, बोलो किससे शादी करनी है, सूट बूट वाले से या पीतांबरधारी से। तो उसने 24 घंटे में जीवन का निर्णय सुना दिया बाबा को, जीवन का निर्णय था वो 24 घंटे में। तो हम यहां क्यों आए थे इसका निरंतर चिंतन होते रहे हमारे अंदर। और नुमाशाम का योग, जो नई आत्माएं आती है उनको ज्ञान सुनाने का, ज्ञान देने का अवसर सहज प्राप्त है सबको। कितने अपना भाग्य बना सकते हो, कितनों को राह दिखा सकते हो। श्रेष्ठ ज्ञान चिंतन का ये स्थान है, तपस्या का श्रेष्ठ स्थान है। जितना चाहो उतनी तपस्या कर सकते हो। कभी भी तपस्या के लिए एक शांत वातावरण की आवश्यकता होती है, ऐसे वातावरण की, ऐसे स्थान की कि जहां पर प्रदूषण ना हो, जहां पर शांतिमय आत्माएं हो, एकाग्रता का माहौल हो, तो वो सब कुछ यहां प्राप्त है। परंतु वो सब कुछ होते हुए भी यदि हम तपस्या न करें तो उसको क्या कहेंगे? सब कुछ होते हुए भी जीवन में दुख आता रहे यहां पर तो क्या कहेंगे?
बीमारी
तो आएगी। तो देखो टाइटल तो बहुत अच्छा मिला है। कौन सा टाइटल मिला है तुम सबको? चाहे मधुबन निवासी, चाहे हॉस्पिटल निवासी, चाहे आबू में रहने वाले, नहीं टाइटल कौन सा मिला है उनको? आबू निवासी। तो आबू निवासी है, आबू का नाम ही देखो कैसा है। भगवान अगर अपने बारे में कुछ लिखे कभी अपनी जीवन कथा तो उसमें आबू का नाम आएगा, हमारा तो आएगा ही। कोई भी महान आत्मा जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो उस स्थान का नाम आता है कि जिसमें उसने अपने कार्य किए। आबू भगवान का लीला स्थान है, लीला धाम है उसका। यहां पर आकर इस अरावली पर्वत श्रृंखला में उसके पर कदम पड़े हैं। इस आबू की पावन भूमि और सुरम्य वातावरण में वो अवतरित हुआ है और यहां पर उसने अपने सारे कार्य किए हैं।
पहले स्थान का ही नाम होता है।
कहां आया वो?
जन्म कहां?
तो इस संसार में स्विट्जरलैंड में नहीं आया वो, अच्छे अच्छे स्थान है, हिमालय में नहीं आया वो। सारे अच्छे अच्छे स्थान को छोड़कर उसने आबू की पावन भूमि को चुना,
उसको स्विट्जरलैंड लगा।
भक्ति में पौराणिक कथाओं में लिखा है कि शिव ने आबू में अपने पैर, वो जो अंकलेश्वर मंदिर है ना, वहां पर निशान है शिव का, ऐसा कहते हैं। जब वशिष्ठ की जो गाय थी नंदिनी वो गिर गई, आबू एक खड्डा था बहुत बड़ा। पौराणिक कथाओं में है कि वशिष्ठ की गाय गिर गई तो वो शिव की आराधना करने लगा, तो शिव ने अपने नंदी को भेजा वो निकालने के लिए। परंतु उसके पहले ही सरस्वती ने उसको निकाल दिया अपनी जलधारा बहाकर, तो वो बाहर निकल गया। परंतु जब नंदी आए तो उसने कहा मैं कुछ करूं, तो उसने यहां पर पर्वतों की स्थापना की, उसका नाम था अर्बुदा, तो उसी का नाम से आबू आया है नाम। और उसके बाद में दिखाया गया है कि शिव ने अपने पैर रखे और इसको, इस पर्वत को तोड़ा, नीचे कर दिया। तो भगवान के कदम रख पड़े इस धरा पर, भगवान ने अपने कर्तव्य किए इस धरा पर। ऐसी ये पावन भूमि है आबू। तो बाबा कहते हैं सुनने से परम धाम निवासी तो सहज ही आ जाता है, आबू निवासी सुन कहने से परम धाम कैसे याद आता है?
कहां से आता है?
क्योंकि आबू है ब्रह्मा बाबा का, तो ब्रह्मा बाबा याद आया, तो ब्रह्मा बाबा याद आया तो शिव बाबा सहज ही याद आएगा, कंबाइंड है ना। तो आबू निवासी सुनने से स्वीट होम भी याद आ जाता है। हम कहां रहते हैं? बस ये संकल्प, ये स्मरण, कहां के हम रहने वाले, कौन सी ये जगह है।
पर यहां एक कहावत भी है कि अगर ये माउंट आबू में एक
राज्य
अगर कोई रुकता
है खत्म हो जाता है। और आबू के लिए ये भी कहते हैं कि आबू की भूमि पर पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है 33 करोड़ देवी देवता है, विचरण करते रहते हैं, यहाँ घूमते रहते हैं देवता, ऐसा लिखा हुआ है महाभारत में कहीं। तो अर्थात तो आबू निवासी सुनने से स्वीट होम भी याद आ जाता है, अर्थात बाप दादा दोनों सहज याद आ जाते हैं। हॉस्पिटल भी कहाँ है? आबू में है ना। ज्यादा सहज याद में हॉस्पिटल वाले रहते हो या जो अपने अपने स्थान में आबू निवासी कहलाते हो वो रहते हो, या जो सेंटर पे रहते हैं वो रहते हैं? कौन ज्यादा याद में रहते हैं? याद में तो सभी रहते हो, लेकिन सहज याद में रहने वाले कौन है? डबल विदेशी तो खुश रहते ही है, डबल विदेशी माना डबल खुश। हॉस्पिटल में खुशी कम होती है या बढ़ती है? कि कभी कभी कम हो जाती है, कम नहीं होनी चाहिए। क्या भी हो, कैसे भी हो, मरने तक बात आ जाए लेकिन मरने तक बात आए लेकिन खुशी नहीं जाए, मृत्यु भले हो जाए, खुशी की कीमत मृत्यु से भी ज्यादा है। मृत्यु भले हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, क्योंकि गारंटी है ना, अगर खुशी में जाएंगे तो अनेकों को खुश करने के लिए जाएंगे। तो इतना पक्का है, शरीर चले जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ब्राह्मण जीवन माना खुशी का जीवन। अगर ब्राह्मण है और खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। परंतु ब्राह्मणों की खुशी गुम हो जाती है।
किसी ने बहुत तंग किया और वो चला जाए तो लोग खुश होते, अच्छा हो ये नहीं लिया। ऐसे भी खुशी होती है।
बाबा ने कहा तार लगी रहे, परसों वरदान था ना ये संगठन में, इधर से कोई बाहर ना जा पाए, जाने पाए, बोझ तुम्हारे ऊपर है। तो सभी पक्के हो तो है ना। किसी ने फोन किया था अभी, एक डॉक्टर बहन ने, कि मुझे जल्दी बुला लो हॉस्पिटल में, यहाँ से गई है पढ़ने के लिए। देखो आप बुला नहीं रहे मुझे, अगर मैं एक से दो अगर हो गई तो बोझ तुम लोगों पर है। तो कब से मैं फोन करती हूँ, फोन नहीं उठाते और बुलाते नहीं मुझे, जल्दी बोलो आप कि मुझे तुरंत आ जाओ। तो पक्के ब्राह्मण तो है ना, इसमें तो पूछने की बात ही नहीं। सब जब अपने साइन करते हो तो पहले ऑक्यूपेशन में बीके लिखते हो, तो ब्राह्मण अर्थात खुश नसीब, सदा खुश रहने वाले। किसी की हिम्मत नहीं
जो खुशी खुशी मिले,
जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर से, माया हो या माया का
बाबा,
माया हो या माया का बाप हो, लेकिन खुशी नहीं गायब कर सके। किसी ने पूछा माया का बाप कौन है? माया का बाप कौन है?
बाबा है तो बाबा बोले नहीं, तुम मेरी बेटी है।
बोला तो है। तो बाबा कहते हैं माया हो या माया का बाप हो, बाप बेटी मिलकर भी खुशी हमारी गायब ना हो। तो बाबा ने कहा रावण को माया का बाप कह दो, गोल गोल घुमा दिया ना, कह दो। तो खुशी कम हो नहीं सकती, तो बाप बेटी मिलकर भी हमारी खुशी ना दे जाए। चाहे जहां भी रहो लेकिन खुशी गायब नहीं हो सकती, असंभव है। इतने फलक से कहते हो पता नहीं, कभी कभी संभव हो भी जाए। यह अच्छी तरह से पता है ना कि ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। तो हरेक का चेहरा खुशनुमा खुश नसीब दिखाई दे, हरेक के मस्तक पर खुशी का भाग्य चमक रहा है। चमक रहा है ना, बादल तो नहीं आते, बादल किसी भी चीज को छिपा देते हैं, तो बादल नहीं आ सकते, सदा चमकता रहे। तो हमारा चेहरा सदा खुशी से चमकता रहे। शक्तियां क्या सोचती है? शक्तियां खुशी के गीत गाती रहती है और पांडव नाचते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन में ही नाचना और गाना है। कर्म भी करते हो तो कर्म भी तो एक डांस है ना, डांस में हाथ पांव चलाना होता है ना। तो कर्म योगी बनकर जो कर्म करते हो वह भी नाचना ही है ना, खेल कर रहे हो ना। अच्छा, तो बाबा ने खुशी की देखो कितनी महिमा की है। अगर यहाँ पे सबसे साइन ली जाए तो साइन करेंगे क्या? कल सुबह तक 24 घंटे तक खुशी नहीं जाएगी, गारंटी। एक पेपर पर अगर लिखा लिया जाए कि कल सुबह इसी समय तक 6 बजे तक जो खुशी अभी है, चाहे आज अगले 24 घंटे में कुछ भी हो जाए, परंतु हमारी खुशी नहीं जाएगी, ऐसा विश्वास किस किस को है? देवेंद्र भाई साइन कर दोगे? कर देंगे। तो घुमा एक पेपर।
लेकिन क्या होता है कि
क्या होता है कुछ नहीं, ये तो बात क्या क्यों कुछ नहीं। बाबा ने कहा क्या कहा सुना ना इधर कि मरने तक की बात आ जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, मृत्यु भले हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। है कोई पेपर?
पेपर तो है, वो थे
नहीं वो कुछ भी हो जाए इतना विश्वास है कि कल सुबह 6 बजे तक जो खुशी आज है जाएगी नहीं, चाहे कुछ भी, इसमें कुछ भी हो सकता है। फिर हाँ फिर सुना ना, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब बीमारी हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, अपनी भी और अपनी तो छोड़ो, अपनी का क्या है, दूसरों की जो हमारे अति निकटतम है, अति समीप है, मृत्यु से लेके बीमार हो सकते हैं, मृत्यु हो सकती है, सब हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें तो पता ही नहीं अगले आधे घंटे में क्या होने वाला है, विनाश भी हो सकता है, हमारा विनाश अर्थात सृष्टि का विनाश, अपना ही विनाश हो गया तो और क्या रह गया, विनाश तो हो ही गया ना। तो घुमाए पेपर, घुमाओ एक पेपर दे दो एक, सुशील भाई लिखो इसमें अगले 24 घंटे खुश रहेंगे। और उसमें सबके नाम फिर देखते हैं। तो खुश रहने के लिए फिर निरंतर ज्ञान को पकड़ पकड़ के रहना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लटके हुए ज्ञान थोड़ा भी छोड़ा कि समझ लेना खुशी गई। टाइम है 6 to 6 AM to 6 AM, 6 AM आज की तारीख 16, 6 AM 17, 17 से 16 से 17 तक 24 घंटे में अगर दुख की लहर आई, अगर दुख के छींटे पड़े, अगर दुख की छाया आई, अगर दुख की हवा फिजा झोंके तो गए घुमाओ घुमाओ नहीं, ये साइन वही लोग करो जो गारंटी है जिनको कि नहीं होंगे, बाकी छोड़ दो। फिर उसमें लिखो नाम लिखो पर क्वेरी नहीं हो सकता, ऐसे कुछ लिख दो, ऐसे लिख दो कि खुश नहीं रहेंगे, ऐसे लिखो नाम लिखा पर असंभव लिख दो या फिर कोई 50-50 अगर 100% रहना है तो पकड़ के रहना पड़ेगा ज्ञान को। एक मिनट भी ज्ञान बुद्धि से गया तो कुछ ना कुछ होगा।
ऊपर से रह सकते हैं
अंदर से नहीं, अंदर की बात चल रही है ऊपर की नहीं हाँ अशोक भाई तो निरंतर खुश रहते हैं।
तो गीत गा ले खुदिया खुदिया
गीत है चल
तेरी चल गए प्रैक्टिस। तो खुशी की कीमत सुन लो वापस, शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, क्योंकि गारंटी है ना अगर खुशी में जाएंगे तो अनेकों को खुश करने के लिए जाएंगे। तो इतना पक्का है शरीर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। ब्राह्मण जीवन माना खुशी की जीवन, अगर ब्राह्मण है और खुश नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। बेदखल इस परिवार से एंटाइटल अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहला सकोगे, ब्राह्मण पद से हाथ धोना पड़ेगा। तो सभी पक्के ब्राह्मण हो ना, इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है। बाबा कहते साइन भी करते हो तो पहले ऑक्यूपेशन में बीके लिखते हो। तो ब्राह्मण अर्थात खुश नसीब सदा खुश रहने वाले, किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम करे, माया हो या माया का बाप हो लेकिन खुशी नहीं गायब कर सके। रावण को माया का बाप कह दो तो खुशी कम नहीं हो सकती, चाहे जहां भी रहो लेकिन खुशी गायब नहीं हो सकती, असंभव है असंभव। इतने फलक से कहते हो पता नहीं कभी कभी संभव भी हो जाए, यह अच्छी तरह से पता है ना कि ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। तो हरेक का चेहरा खुशनुमा खुश नसीब दिखाई दे, हरेक के मस्तक पर खुशी का भाग्य चमक रहा है ना। बादल तो नहीं आते, कौन से बादल, बादल आए और चले जाए, संडे की मुरली थी ना, परिस्थिति क्या है, जैसे बादल आए और चले जाए, जो सदैव विधेयी स्थिति में रहते हैं उनके लिए परिस्थितियां है, परिस्थितियां आनी है, फिर भी परिस्थितियां अपना प्रभाव उन पर नहीं डालती, प्रकृति के पांच तत्व चाहे कितना भी कोशिश करे उन्हें हिला नहीं सकते, बादल आए और बादल चले जाए ऐसी उनकी स्थिति होती है, जो विदेही स्थिति में निरंतर रहते हैं और अनुभव करते हैं। तो खुशी अगर रखनी है तो उसके साथ केवल वो कृत्रिम खुशी नहीं है हमारी जो ऊपर से हंस रहे है बस, खुशी अर्थात एक आंतरिक स्थिति है, खुशी अर्थात आंतरिक सुख, खुश वही आत्मा रह सकती है जो कि संतुष्ट है, संपन्न है, जिसे अनुभव हो रहा है कि कुछ तो मिला है बहुत सारा, जो भरपूर है। परंतु जो भरपूर नहीं है वो ढूंढते रहेंगे खुशी को, जो भरपूर नहीं है जल घगरी छलकत जाए, जो भरी हुई नहीं है वो छलकती रहती है, परंतु जो भरा हुआ है वो शांत रहता है, स्थिर रहता है। अच्छा, ओम शांति।
लो जी खुशी, आपकी खुशी इधर आई।